पृष्ठ संख्या 172, अध्याय 19, घराने के अनुशासन में निहित सौंदर्य। शास्त्रीय तबला वादन का प्रस्तुतिकरण प्रायः घराने के पारंपरिक नियमों के अनुसार ही होता है। तबले में विस्तारक्षम रचनाओं के बजाने के दिल्ली घराने के नियम बड़े सख्त होते हैं। उसका उदाहरण इस प्रकार है। पहला, कायदे के विस्तार में मूल कायदे में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनके अलावा दूसरे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस नियम का पालन दिल्ली वाले पूर्णतः करते हैं। दूसरे शब्दों का प्रयोग न करके बंधन से तबला वादक की विस्तार प्रक्रिया पर एक मर्यादा सी आ जाती है और उसे अपनी बुद्धि और प्रतिभा के बल पर सीमित शब्दों में ही नई नई शब्द कृतियां बनाकर नए नए पलटों की निर्मिति करनी पड़ती है। इस बंधन के कारण ही उसे रचना के विस्तार में अनुशासित मार्ग का अवलंब करना पड़ता है। इस ढंग से कायदा प्रस्तुत करने से श्रोताओं को भी आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा, दिल्ली घराने का दूसरा नियम यह है कि कायदे के विस्तार में जिस क्रम से शब्द आए हैं उसी क्रम से एक एक शब्द को प्रधान शब्द बनाकर उसका विस्तार किया जाता है। उदाहरण के लिए, धाती धागे न धा तिरिकिट कायदे को ले, इसमें दोहरे के बाद शुरू के कुछ पलटे धा और धाती शब्दों को प्राधान्य देते हुए बजाए जाते हैं। उसके बाद धाती धागे ना धाति रिकिट धाती धागे धीना गीना शब्दों का क्रमशः प्रयोग होगा। इस तरह का विस्तार यांत्रिक रूप में नहीं बल्कि रचना में आए हुए शब्दों के कलात्मक रीति से नए जोड़ शब्द बनाकर किया जाता है। तीसरा, तबला वादन में खाली भरी के तत्व से ही रचना विस्तार करने का नियम बंधन है। घराने के नियम, कायदे, बंधन आदि कला प्रस्तुति में बाधक नहीं होते बल्कि ऐसे रचना विस्तार से श्रोताओं को अनोखा आनंद प्राप्त होता है। खाली भरी तत्व के इस्तेमाल से रचना संबद्ध रूप में ही प्रस्तुत होती है और संबद्धता में सौंदर्य देखना मानवीय स्वभाव की एक खासियत है। पृष्ठ संख्या 173, अनुशासन मुक्त विचार और सौंदर्य। कभी कभी अनुशासन के नियमों और बंधनों को तोड़कर भी तबला बजाया जाता है जिसे अनुशासन मुक्त वादन कहा जा सकता है। यहाँ अनुशासन मुक्त शब्द से मेरा तात्पर्य है परंपरा से मुक्तता, घराने के बंधनों से मुक्तता। आज के तबला वादक में इन प्रकार की बंधन मुक्तता, पेशकार वादन, कायदे, रेले का विस्तार आदि के प्रस्तुतिकरण में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, पेशकार वादन में धीमी लय में शांत रस प्रधान वादन की जगह चंचल प्रकृति का श्रृंगार रस प्रधान वादन का प्रस्तुतिकरण। पेशकार वादन गायन में की जाने वाली आलापी का प्रतिरूप है। आलापी धीमी लय में होती है जो शांत रस पैदा करती है। इस लय में बजाने में कुछ वादकों को कभी कभी नीरसता क्षीणता महसूस होती है और सामान्य श्रोताओं में चैतन्य निर्माण करने के लिए चमत्कृतिपूर्ण चंचल प्रकृति लय में वादन किया जाता है। सर्वसाधारणतः रसिकों को ऐसी चमत्कृति बहुत पसंद भी आती है। दूसरा, खानदानी पारंपरिक कायदे की जगह लग्गी सदृश रचनाओं का प्रस्तुतिकरण। तबला वादन में सुरीली चाट, वजनदार, प्रभावपूर्ण बायां और तिट तिरिकिट झिनगिन आदि शब्दों का तैयारी में उपयोग करके एक गूंज युक्त नाद के रौ की निर्मिति आदि के जरिए सामान्य श्रोताओं को प्रभावित किया जा सकता है। बहुत से कलाकार आजकल पूरी रचना बजाने के बदले छोटे चाले सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। इस तरह के वादन में एक बात ध्यान में रखने की है कि तबला वादन में सबसे ज़्यादा सौंदर्य प्रस्तुतिकरण की रीति में निहित होती है, और निकास अच्छा सुंदर और कलात्मक हो तो उसमें अंतर्भूत भाषा सुंदर लगती है और तभी हम साहित्य का आनंद प्राप्त कर लेते हैं। किंतु चलनयुक्त वादन के बारे में एक आपत्ति उठती है कि ऐसे चलन आकार में छोटे होने के कारण उस प्रस्तुतिकरण में तालाकृति की प्रतीति नहीं होती। तीसरा, खाली भरी के सूत्रों का मनमाना उपयोग करने से श्रोताओं की अपेक्षा पूर्ति के बदले होने वाला अपेक्षा भंग, खाली भरी के अनुसार वादन करने में दो बातें सामने आती हैं। भरी युक्त शब्द का बाएं के घुमारे के साथ प्रयोग और बाएं के बिना खाली युक्त शब्दों का प्रयोग, अर्थात हर आवर्तन में नियमितता से भरी का और खाली का बारी बारी से बचता रहना। पृष्ठ संख्या 174। जिन शब्दों का भरी में प्रयोग किया गया है उन्हीं का खाली में प्रयोग करके चक्राकार के रूप में बजाना। घराने के परंपरागत नियम और बंधनों से के अनुसार तथा उपर्युक्त अन्य नियमों के अनुसार ही सब जगह खाली भरी युक्त तबला वादन होता है, लेकिन हर बार इन नियमों का पालन नहीं होता। खाली में अन्य शब्द भी आएंगे। इस तरह से बजाने से विस्तार क्रिया का एक अलग रास्ता बन जाता है, जिससे श्रोताओं का कलात्मक अपेक्षा भंग होकर उन्हें एक अनोखा आनंद प्राप्त होता है। चौथा, तबला वादन के प्रस्तुतिकरण में वादन के विविध अंगों के क्रम को तोड़ना। उस्ताद थिरकवा खां साहब अच्छे परिणाम के लिए कुछ प्रचलित परंपराओं को तोड़ते थे। पेशकार वादन करते समय वे पेशकार का विस्तार करते करते घेना धागेना धात्रक धागेना के ड्योढ़ी के कायदे में प्रवेश करते थे और महफिल में रंग जमाते थे। उसी तरह फरुखाबाद के रेले के वादन के दौरान वे खूबसूरत टुकड़े बीच बीच में बजाते थे। इस कलात्मक चमत्कृति से उनके वादन में चैतन्य शक्ति की अनुभूति प्राप्त होती थी। तबला वादन बंधन मुक्त या बंधन युक्त कला। तबले का ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही साथ ऐसा हाथ तैयार करना जरूरी है जो एक वजनदार और माधुर्यपूर्ण नाद निर्माण कर सके, और तबले पर बजने वाले विविध अक्षर और रचनाएं कुशलता से और प्रभावात्मक ढंग से बज सके। ऐसा हाथ हासिल करने के लिए योग्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के साथ साथ दीर्घ काल तक नियमितता से सख्त रियाज की जरूरत है। अनुशासनबद्ध रियाज की भट्टी में से जब तबले के शब्द और अक्षर सुलग कर निकलते हैं तब उन शब्दाक्षरों को मंत्र शक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि और उसके सुप्त गुण जब अनुशासन की अग्नि परीक्षा में से होकर निकलते हैं तभी वे गुण प्रभावी क्षमता में परिवर्तित हो जाते हैं। डिसिप्लिन इज अ रिफाइनिंग फायर इन विच टैलेंट बिकम एबिलिटी। हर संगीत के विद्यार्थी के लिए अपनी विद्यार्थी दशा में संगीत शास्त्र का गहरा अध्ययन करना जरूरी है। जो विद्यार्थी संगीत शास्त्र और अनुशासन की उपेक्षा करेगा, उसका संगीत चंचल प्रकृति का और कम असरदार बनेगा। घरानेदार प्रभावी और अनुशासनबद्ध वादन के लिए उस घराने के वादन तंत्र और उस वादन शैली के मंत्र पहले सीखने चाहिए। पृष्ठ संख्या 175। उनको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए और रियाज तथा चिंतन के बल पर उस वादन शैली पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। यह प्रभुत्व प्राप्त कर लेने के पश्चात जब कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करता है, तब उसे यह भूल जाना चाहिए कि मैं विशिष्ट वादन शैली के माध्यम से अपनी कला पेश कर रहा हूँ। कला के प्रस्तुतीकरण के समय कलाकार के मन में एक ही सवाल उठना चाहिए कि मेरा वादन स्तरीय और प्रभावी कैसे हो। घराने के सौंदर्य तत्वों से बनी हुई कला असरदार होनी ही चाहिए। ऐसी कला के प्रस्तुतीकरण में घराने का अनुशासन और शास्त्र बाधक नहीं बन सकते। कई बार यह सवाल पैदा होता है कि शास्त्रों के बंधन, नियम और अनुशासन क्या कला को सचमुच हानि पहुंचाते हैं? कितनी बार हम देखते हैं कि गायक झूमरा या आड़ा चौताल की बंदिश त्रिताल या एक ताल में गा लेता है। अपनी इस बात के समर्थन में वह कहता है कि झूमरा और आड़ा चार ताल चौताल जैसे तालों में गायन उतना असरदार नहीं होता जितना कि त्रिताल और एक ताल में। असली बात यह है कि उस कलाकार में झूमरा और आड़ा चौताल में गाने की क्षमता ही नहीं होती। मुश्किल प्रतीत होने वाले खूबसूरत कायदों का रियाज करने के बदले कलाकार आजकल आसान शब्दाक्षरों से बने कायदे की रचना बजाना ही अधिक पसंद करते हैं। कलात्मक एवं शास्त्र शुद्ध खाली भरी के नियमों के आधार पर बनाई गई रचनाएं सुंदरता अवश्य निर्माण करती हैं, लेकिन उसके लिए घराने के अनुशासन और सख्त रियाज की जरूरत होती है। बहुत से कलाकारों को यह खाली भरी का तत्व असुविधाजनक लगता है। अगर हम अलग अलग खेलों के नियम देखेंगे तो यह बात अधिक स्पष्ट होगी। उदाहरण के लिए, क्रिकेट में गेंदबाजी करते समय हाथ को सीधा और लंबा करके जब गेंद फेंकी जाती है तभी उसे सही माना जाता है, और अगर हाथ को मोड़कर गेंद फेंकी जाती है तो उसे गलत माना जाता है और उसके लिए गेंदबाज को सजा भी हो सकती है। वास्तव में नियम का पूरा पालन करते हुए सीधे हाथ से डाली गई गेंद से खेल का स्तर बढ़ता है और गेंदबाजी भी देखने में सुंदर लगती है। इसी प्रकार अन्यान्य खेलों में तरह तरह के नियम होते हैं और उनके पालन से खेल में ज़्यादा सौंदर्य पैदा होता है तथा प्रेक्षकों को अधिक आनंद मिलता है। संगीत भी इसका अपवाद नहीं है। अनुशासन और अलग अलग नियमों का निर्वाह संगीत के स्तर को बढ़ाता है। स्वतंत्रता के नाम पर जब कोई कलाकार अपनी कला के प्रस्तुतीकरण में कला के नियम, बंधन, परंपरा इन सबको तोड़ता है, तब हमें इस प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रतिभावान समर्थ कलाकार को अपनी खुद की निर्मिति और वादन प्रस्तुतीकरण में केवल अनुशासन और शास्त्र के नियमों के कारण जब रुकावट महसूस होती है तो इन नियमों को तोड़कर अपनी कला का प्रस्तुतीकरण करने का उसे पूरा हक है और होना चाहिए। पृष्ठ संख्या 176। कभी कभी कुछ नियमों और प्रतिबंधों के कारण ज्ञानी और श्रेष्ठ कलाकार को अपनी कला पेश करने में तकलीफ होती है और उसे आनंद और समाधान प्राप्त नहीं होता। उस हालत में वह बंधन मुक्त कला अवश्य पेश कर सकता है। यहाँ एक बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी समर्थ कलाकार को बंधन मुक्त कला प्रस्तुत करने से पहले बंधन युक्त कला पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए। यह तौलनिक ज्ञान जैसे कलाकार को होना चाहिए, वैसे ही श्रोताओं को भी होना चाहिए। अगर ऐसा ज्ञान श्रोताओं को न हो तो बंधन युक्त या बंधन मुक्त कला का महत्व उन्हें महसूस ही नहीं होगा।